दीवा इस वक्त आर्यांश के साथ गाड़ी के अंदर थी। आज उसका दिन काफी व्यस्त था और साथ ही कियाना उससे मिलने के लिए आ गई थी। कियाना और दीवा के बीच अच्छी खासी बहस हो गई थी। आर्यांश से मिलते ही दीवा ने कियाना के बारे में सब कुछ बता दिया था। आर्यांश दीवा के साथ एक अलग ही शख्स बन जाता था। वो प्यार से उसके गाल खींच रही थी, जबकि उसके ऐसा करने पर आर्यांश गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी क्यूट हरकतें भी कर सकते हो, दीवा ने आर्यांश के गाल खींचने के बाद उसके नाक को हल्के से पकड़ते हुए कहा। आर्यांश ने दीवा का हाथ पकड़ा और उसे पर हल्का सा किस करके कहा, और मेरी ये क्यूटनेस सिर्फ तुम्हारे सामने है। फिर भी सबको ये लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाया है, जबकि सच तो ये था कि तुम खुद मुझ तक आए थे, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात पर नाराज होने के बजाय आर्यांश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि मैं बहुत खास हूँ और ऐसे ही किसी के पीछे नहीं जाता। उसकी बात का जवाब देने के बजाय दीवा उसकी तरफ घूरकर देख रही थी। आर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है। वो आर्यांश कपूर जो सबसे बात भी नहीं करता, वो तुमसे प्यार कर रहा है, फिर भी तुम मुझे देखकर मुंह बना रही हो? दीवा हल्का सा मुस्कुरा दी। पहले जब दीवा आर्यांश को नहीं जानती थी, तब उसे यही लगता था कि वो बहुत ही सख्त और पत्थर दिल इंसान है, लेकिन जैसे जैसे दीवा उसे जानने लगी थी, तब पता चलने लगा था कि आर्यांश तो बहुत ही प्यारा इंसान है, साथ ही उसे बात करना भी अच्छा लगता है। पर हाँ, वो हर किसी के आगे अपना ये चेहरा नहीं दिखाता था। कुछ देर के लिए उनके बीच खामोशी छाई हुई थी। दीवा ने अचानक आर्यांश से पूछा, आर्यांश, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो, आर्यांश गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। मुझे पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी? दीवा ने धीमी आवाज में कहा। आज आर्यांश का मूड अच्छा था तो उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया था। सिर्फ एक, वो लड़की जिसे मैं तुमसे पहले प्यार करता था, उसके अलावा और कोई नहीं था, आर्यांश ने बिना कुछ छुपाए सीधे सीधे कहा। फिर तो हम एक जैसे ही हुए, मैंने तुम्हारे अलावा सिर्फ रक्षित को डेट किया था। हमने एक दूसरे को लगभग 6 साल तक डेट किया था। 1 साल हाई स्कूल में साथ थे और 5 साल में पढ़ने के लिए अब्रॉड चली गई थी, दीवा ने बताया। अचानक आर्यांश ने शरारती नज़रों से दीवा की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, इतने टाइम तो दोनों साथ थे और फिर भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं था, उसमें कोई कमी थी क्या? और तुम्हें क्या लगता है, सबको तुम्हारी तरह बस वही एक चीज़ चाहिए होती है क्या? दीवा ने चिढ़कर कहा। हाँ, सही कहा, सब मेरे जैसे नहीं हो सकते, मुझे तो अभी भी वही चाहिए। वैसे तुम्हारा पीरियड्स चले गए क्या? आर्यांश ने दीवा को तंग करते हुए पूछा। नहीं गए, दीवा ने मुंह फेर कर जवाब दिया। अब इतना इंतजार कौन करे, कैसा होगा जो मैं कियाना के पास चला जाऊँ? आर्यांश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। हिम्मत है तो जाकर दिखाओ, फिर मैं भी किसी और आदमी के पास चली जाऊंगी, दीवा गुस्से में बोली। हालांकि दीवा ने सब कुछ काफी बेपरवाही से कहा था, लेकिन उसका किसी और के पास जाने की बात सुनते ही आर्यांश ने जल्दी से ब्रेक लगाए और गाड़ी एक झटके में रुक गई थी। आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा और फिर उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, दीवा, अगर तुमने किसी और के पास जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और फिर तुम कहीं नहीं जा पाओगी। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, दीवा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसमें बेहिसाब गुस्सा था। अगर ये मजाक था तो मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, मुझे रिश्ते में लॉयल्टी चाहिए, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा और ना ही तुम्हारी तरफ से धोखा बर्दाश्त करूंगा, आर्यांश ने इंटेंस वॉइस में कहा और फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। दीवा ने गहरी सांस ली और आर्यांश से थोड़ा दूर होकर बैठ गई थी। फिर पूरे रास्ते उनके बीच कोई खास बात नहीं हुई। घर जाकर दोनों ने साथ में डिनर किया और डिनर के बाद वो आर्यांश के विला के म्यूजिक रूम में थे। दीवा ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यांश के घर में इस तरह का म्यूजिक स्टूडियो हो सकता था। दीवा हर एक इंस्ट्रूमेंट को छूकर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट था और उसे खुश देखकर आर्यांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। इस बीच सुमन वहां पर उनके लिए डेजर्ट लेकर पहुंची। वहां आते ही सुमन ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यह कमरा तो सबसे खूबसूरत है, संगीत हमारी जिंदगी में एक रंग भर देता है। जिस तरह से सुमन की आंखों में उस कमरे को देखकर चमक आई थी और वो उसे कमरे की तारीफ कर रही थी, उससे साफ था कि उसे भी म्यूजिक से प्यार था। दीवा ने तुरंत उनकी आंखों में ये पढ़ लिया था। सुमन, माँ को भी म्यूजिक से प्यार है ना, कुछ बजा के सुनाइए ना, दीवा उनके पास जाते हुए बोली। अरे नहीं, इस उम्र में मैं कहाँ कुछ बजा पाऊंगी, ये तो आजकल के बच्चों के शौक होते हैं, आप दोनों ही करो, सुमन ने झिझकते हुए जवाब दिया। दीवा ने फिर आर्यांश की तरफ देखा। आर्यांश ने उसका इशारा समझते हुए सुमन से कहा, प्लीज सुमन माँ, ट्राई तो करके देखिए, मैंने कभी आपको बजाते हुए नहीं सुना है। आर्यांश के इंसिस्ट करने पर सुमन वहां रखे सितार की तरफ गई। सुमन ने भी ये महसूस किया था कि दीवा के आने के बाद आर्यांश काफी बदल गया था। वो खुलकर अपना नरम चेहरा दूसरों के सामने दिखने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुमन ने सितार पर एक उदास सी धुन बजाई जो कि सुनने में काफी अच्छी थी, लेकिन उसे सुनकर दीवा का दिल दर्द से भर उठा था। सुमन के चेहरे पर भी गहरी उदासी के भाव थे। अपनी बेटी की मौत के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। यहाँ आने के बाद सुमन ने मानो फिर से जीना शुरू कर दिया था। आर्यांश और दीवा घर आते थे तो उन्हें लगता था मानो उनके बच्चे घर लौट आए हों। दीवा अगर खाने की कोई छोटी सी भी ख्वाहिश उनके सामने रख देती थी तो वो पूरे दिल से उसके लिए खाना बनाती थी। जैसे ही उनका गाना खत्म हुआ, आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा जिसकी आंखें नम थी। आर्यांश समझ गया था कि ये म्यूजिक का असर है। आर्यांश ने सुमन की तरफ देखकर कहा, जब आप इतना अच्छा बजा लेती हैं तो आपको कोई खुशनुमा धुन बजनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा दुखों को लेकर ही उदास रहा जाए, हमें खुद को दूसरा मौका देने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आर्यांश ने दीवा को अपनी बाहों में उठा लिया था। उसे सुमन की भी परवाह नहीं थी। आर्यांश को इस तरह खुलेआम प्यार जताते देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो वहीं दीवा के गाल लाल हो रहे थे। आर्यांश इसे अपने कमरे में लेकर आ गया था, लेकिन दीवा अभी भी सुमन का उदास चेहरा भूल ही नहीं थी। कमरे के अंदर आते ही दीवा ने आर्यांश से कहा, सुमन माँ की जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं ना, उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे उनके बच्चे की मौत हो गई और उनकी मुश्किल सिचुएशन में तुमने उनका साथ दिया। हाँ, अकेले तो वो बहुत है, तभी मैंने उन्हें तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, लेकिन मानो वो बहुत खुश हुई थी, वरना मुझे अपने घर में किसी अननोन का रहना पसंद नहीं है, उनके साथ मेरा एक अलग ही जुड़ाव है, आर्यांश ने बताया। सुमन के जीने का सहारा उसकी बेटी थी, लेकिन उसकी मौत के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। दीवा ये समझ सकती थी कि किसी का इस तरह हमेशा के लिए छोड़कर जाना कितना तकलीफ भरा था। अच्छा आर्यांश, मैं अगर मर जाऊंगी तो तुम फिर अकेले क्या करोगे? अचानक ही दीवा ने आर्यांश के सामने एक अजीब सा सवाल रख दिया। आर्यांश के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए थे। उसने तुरंत कहा, तुम क्यों मर जाओगी और ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। मेरा मतलब है, जब मैं 70 या 80 साल की हो जाऊंगी तब तो मर ही जाऊंगी ना, दीवा ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। तुम्हें पूरी उम्र मेरे ही साथ रहना है और हम मरेंगे भी साथ में ही, आर्यांश बोला, और इतना कहकर उसने दीवा को अपनी बाहों में खींच लिया था।
वहीं दूसरी तरफ जैन फैमिली के लिविंग रूम में राजवीर जैन अपने टैबलेट में कुछ देखते हुए स्मोकिंग कर रहे थे। इस बीच कियाना वहां पर चिल्लाते हुए पहुंची। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। राजवीर ने गहरी सांस ली और उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, किया, तुम्हें कितनी बार कहा इस तरह चिल्लाते हुए मत आया करो, थोड़ा सहन करना सीखो। आपके लिए कहना आसान है कि थोड़ा सहन करना सीखो, आपको पता भी है क्या हुआ है? उस घटिया लड़की दीवा गोयनका ने मेरी इंसल्ट की और मुझे ये कहा कि आर्यांश मुझे प्यार नहीं करता। पापा, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस लड़की की अपने हाथों से जान ले लूं, कियाना ने चिल्लाते हुए कहा। राजवीर ने बेपरवाही से सिर हिलाकर कहा, तो क्या गलत कहा उस लड़की ने? आर्यांश तुमसे प्यार नहीं करता है, अगर प्यार करता तो अब तक तुमसे शादी कर चुका होता। मुझे समझ नहीं आता तुम इस पर क्यों अटकी हुई हो, दुनिया में और भी लड़के हैं, जाकर उनसे मिलो, शायद फिर तुम्हें कोई और अच्छा लग जाए। उनकी बात सुनकर तो कियाना का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो पैर पटकते हुए बोली, आप भी ऐसा कह रहे हैं पापा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। राजवीर ने एक नज़र कियाना की तरफ देखा। आज तक कियाना के हर सही गलत में उन्होंने साथ दिया था, लेकिन इस बार बात अलग थी। अगर उन्होंने कियाना को नहीं रोका तो वो अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर सकती थी। राजवीर ने कियाना को अपने पास बैठने का इशारा किया। कियाना के बैठते ही उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, किया, अगर किसी फल को पकने से पहले ही तोड़ दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता है, लेकिन अगर मैंने इस फल को नहीं तोड़ा तो कभी वो मेरे पास आएगा ही नहीं। बीच में तोड़ा हुआ फल मीठा ना हो, लेकिन वो आपकी भूख तो मिटा ही सकता है, कियाना ने गुस्से में उबलते हुए जवाब दिया। कियाना की आंखों में दीवा के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। ऐसा नहीं था कि आर्यांश के किसी और के साथ डेटिंग करने के र्यूमर्स पहले नहीं फैले थे, लेकिन तब कियाना को इतना डर नहीं था। आज वो दीवा से मिली तो वो जान गई थी कि दीवा इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। ऐसे में कियाना को कुछ करना था जिससे वो दीवा को अपने रास्ते से हटा दे, चाहे फिर उसे उसके खुद के डैड तक क्यों ना समझाएं। लेकिन अब कियाना को हर हाल में दीवा को अपने रास्ते से हटना ही था। अब कियाना एक्शन में आ गई है तो दीवा को भी संभल जाना चाहिए। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।